उसके मुख से श्वास से आग निकल गई थी। उन्होंने कहा जैसे ज्वालामुखी पर्वत तो नहीं है, ये पहाड़ी जैसा लगता है। सामने में उसकी जीप ऐसे पड़ी हुई थी मानो कालीन, लाल कालीन बिछा दिया गया हो, मानो घाटी में सुंदर सुंदर लाल लाल फूल खिले हुए हों, ऐसा बना रखा है। दाढ़े कैसी है, विराट मानो विराट कंद रहा है उसका मुंह, ऐसे एक जबड़ा ऊपर एक जबड़ा नीचे, आकाश पताल एक कर रखा है। बच्चों को चाहते चलो तो देखते हैं जो क्या है। एक ने कहा जी भाई भीतर मत जाओ, अरे ये क्या कर लेगा, हमारा कृष्ण भैया है ना, वो हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए निर्भीक होकर के ग्वाल बाल आगे प्रवेश कर गए और पीछे से जितने बच्चे थे वो भी प्रवेश कर गए। कृष्ण वहीं से हाथ पुकार कर अरे मत जाओ मत जाओ, और जाने ऐसा कहने के पहले वो भीतर में प्रवेश कर। कृष्ण कहा जी ये तो प्रवेश कर गए, अब क्या किया जाए। कहा तब हमको भी प्रवेश करना पड़ेगा, और वो इसीलिए वो मुख बंद नहीं कर रहा था जब कृष्ण अभी सब तो आ गए हैं, अब कृष्ण आएगा तब अपने जबड़े को बंद कर देंगे और तब ये मारा जाएगा, उसे निगल लेंगे। जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो उसने अपने मुख को बंद कर दिया। कृष्ण ने अच्छा, जब किसी को मरने का होता है ना तो सांप को उठा करके अपने गले में माला जैसा पहन लेता है और वो सांप काटता है वो अपने आप मर जाता है। तो वह मरने पर आ गया, इसलिए गले में अटक गए वायु आगे से इसे इधर में नहीं जा रही, जहां गला है वहीं पर अटक गए, न वायु भीतर की आ रही है न बाहर से जा रही। और कैसे हो गए मानो एकदम लाल गोले का पिंड हो जाता है, लोहा गर्म होकर के लाल वैसे एकदम तप्त हो गए। इतना गर्म हुआ और ऐसे हुआ जैसे वो हवा बाहर नहीं निकली गई तक उसका ब्रह्मांड यहीं से फट गया, और फट करके उसकी आत्मा निकल गई, आकाश में विचरण करने लगी। देखो तो इसका सौभाग्य, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा तक जिन प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हैं और नहीं आता है वो चरण कमल यह आज स्वयं ही उसके मुख में घुस गए उसके हृदय में, यही भगवान की अहस की दया है। अब उसका बाकी क्या रहा, कृष्ण ने उसके मुख को खोल करके अपने बाहर हुए बछड़ों को बाहर किया और ग्वाल बालों को बाहर। ग्वाल बाले तो एकदम उचित हो गए थे और बछड़े कृष्ण ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से उनके तरफ में देखा और सब बीच होकर के निकले और कृष्ण की जय देने लगे। कन्हैया भैया की जय हो, कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो, इस प्रकार से कहने लगे। बड़े आनंदित हुए, हम लोग तो मर ही चुके थे इसने बचा दिया हमको। और वो आत्मा जो आकाश में दिव्य ज्योति के रूप में जो घूम रही थी वो झट आकर के कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी ने देखा अरे इतना दुष्ट और उसकी आत्मा को गति दे करके इसको कैसी गति, मोक्ष की गति दे दी, इनकी कुछ लीला देखे। इसलिए वो ब्रह्मलोक में न जा करके वहीं पर ठहर गए। इसके बाद में कृष्ण बच्चों को लेकर के आज दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए ये लोग जाकर के वहां एक पेड़ के नीचे मंडली बना करके खाने लगे। एक मंडली दो तीन चार दस बीस हजारों की मंडली एक एक के बाद में राउंड सर्कल बनता गया, लाखों बच्चे उसमें बैठे। जो पीछे बैठा है वो देख रहा है कि हम कृष्ण के सामने बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं उन्होंने देखा कि हम सामने, इधर वाला भी देखेंगे सामने, बहुत दूर वाला वो देख रहा है कि मैं सामने हूँ एकदम कृष्ण के निकट। कृष्ण से हंस रहा हूँ और हंसा रहा हूँ और मैं भी खा रहा हूँ, कृष्ण को खिला रहा हूँ और कृष्ण भी हमको खिला रहे हैं। किसी ने निकट दूर नहीं देखा, ये भगवान की अपूर्व एक लीला थी। सभी देख रहे हैं कि कृष्ण हम ही को प्यार कर रहे हैं सबसे अधिक और खा रहे हैं और खिला रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा अच्छा मैं एक काम करूं, ये जितने बछड़े हैं और बाल बाल हैं इन सबको चोरी करके और कहीं रख दूं कंदरे में। उन्होंने क्या किया जो बछड़े जो चल रहे थे उनको एक तरफ से हाथ करके ले आ करके एक कंदरे में लेकर के बंद कर दिया। बच्चों ने देखा कि हमारे बछड़े किधर गए, कृष्ण जी हाँ हाँ भैया ये कहाँ गए, हमारा गोधन सब चला गया, बड़े दुखी हो गए माने कुछ नहीं जानते। बच्चों ने कहा मैं हम लोग जा रहे हैं, तो उसने कहा तुम लोगों से नहीं होगा, मैं अभी पेड़ पर चढ़ करके बांसुरी बजाता हूँ और सभी बछड़े आ जाएंगे जहाँ से। आज बांसुरी बजाई किंतु बछड़े कोई नहीं आए। कृष्ण हाथ में दधी कौल ले करके और खोज रहे हैं उनको, बड़ी चिंता में है, मुख सूख गया धूल से, ये सब धूसरित हो गया, मानो बड़े दुखी हो रहे हूँ। खोजते खोजते हार गए, नहीं मिले। सोचा जाकर जहाँ से हम चले थे वहां से चले, फिर जहाँ पर बच्चों को छोड़ करके खाते हुए छोड़ करके आए, यहाँ देखा ये बच्चे नहीं, इनको भी ब्रह्मा ने लेकर के कृष्ण की अनुपस्थिति में दूसरी जगह कंदरे में बंद कर दिया। देखे जब क्या करते हैं ये। कृष्ण ने बहुत देर तक इधर उधर देखा, बच्चे नहीं मिले, बछड़े भी नहीं मिले। उन्होंने कुछ चिंता की और चिंता करने के बाद में जितने बछड़े थे, लाल कोई, काले कोई, सफेद कोई, कूच कोई कूच, ऐसे उतने बछड़े उसी प्रकार के बन गए, और जितने बच्चे थे बाल बाल उतने बन गए, लाखों करोड़ों बन गए। और जिनकी जैसा स्वर था, अभ्यास था, जिनके जैसा स्वभाव था, चरित्र था, बोली जैसी थी, सब कुछ वो बन गए। यहाँ तक कि उनकी लटिया, बंसी, कमली, जो कुछ था उनके वस्त्र शस्त्र सब अपने आप बन गए। और प्रतिदिन उनको लेकर के जाते घर पर और वहां से आकर के फिर उच्चारण कराते। ब्रह्मा जी तो ये कर करके तो चले गए अपने ब्रह्मलोक। इधर एक वर्ष तक ऐसी लीला चलती रही। कृष्ण स्वयं कृष्ण है और जितने बाल बाल हैं वो सब कृष्ण ही बने हुए हैं, आप बछड़े भी ऐसे बनेंगे। ऐसा क्यों किया, क्या कहूं? कृष्ण ने एक दिन देखा जितनी ब्रज में गायें हैं वो चाहती हैं कि मैं इनका बछड़ा बन जाऊं, इनका बेटा बन जाऊं, वो हमको दूध पिलाना अच्छा लगता है उनको। और जितनी माताएं हैं ब्रज में वो अपने बच्चों से मुझे प्यार करती हैं और चाहती हैं कि कृष्ण ही हमारा बेटा होता है। और ब्रज की जितनी लड़कियां हैं वो सभी यही सोचती हैं कि कृष्ण ही हमारा वर होता भविष्य में, हमारी शादी हो तो इसी के साथ में शादी। जब ये लोग कर रही हैं ऐसा, तो ऐसा करना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना ये कृष्ण का काम है। जो यदि आंतरिक इच्छा से भगवान से यदि कोई प्रार्थना करे धन के लिए, जन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी सांसारिक कामना के लिए प्रभु समर्थ हैं। इसलिए गिरिराज की लाखों लोग परिक्रमा देते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। झूठ मत मानना इस विषय में। परम सत्य ये है जो जैसा वो तो कल्पतरु है ना, जो कोई कल्पतरु के नीचे जाकर के कोई भी आकांक्षा करेगा उसको वो पूर्ण कर देते हैं। सुना है कि कहीं एक कल्प वृक्ष था, एक आदमी एक राजा शिकार करता हुआ हम पर गया। शाम हो गई, शिकार के पीछे घूमते घूमते भूखा और प्यासा वो डोल रहा था। शाम जब हो गई, थक गया, चूर हो गया और भूख से अत्यंत काहिल हो गया, तो एक बरगद के पेड़ के नीचे उपस्थित हुआ जंगल के बीच में। सोचा यदि कहीं से भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। इसने में देखा भोजन की थाल वहां पर पहुंच गई। भाई पानी भी सुंदर मिल जाता, देखा ये पानी एकदम भरा, बहुत सुंदर पानी, भोजन करके पानी। भाई यदि पलंग मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। इसने में देखा ये पलंग आ गया। थोड़ी देर के बाद में वहीं पर सो गया। आधी रात को उसकी नींद खुली, देखा कि बाघ गर्जन कर रहे हैं, सिंह गर्जन कर रहे हैं। अरे भाई बाघ ना आ जाए, इस समय एक बाघ आ गया। डर गया, बोला जाए अरे हमको खाना जाए, इस समय बाघ आकर के झपट करके खा लिया। ये तो है कल्पतरु। भगवान कल्पतरु कैसे हैं? पेड़ के समान जड़ नहीं है, जो चाहेगा वो दे देंगे, वो विचार करके देते हैं। जो उसमें तुम्हारा कल्याण हो, वो अच्छे तरह से चिकित्सक भी हैं। तुम्हारे चाहने से भी तुम यदि बीज खाना चाहेगा तो बीज नहीं देंगे, वो तुम्हें अमृत ही देंगे, वो ऐसे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अपनी योग माया को प्रेरित करके ब्रह्मा जी को खींच लाया। और ब्रह्मा जी के मन में उन्होंने ऐसी भावना कराई, इच्छा कराई, जो मैं देखूं इनकी लीला। उन्होंने योग माया के द्वारा उसके अंदर में एक प्रेरणा दी, इसके बछड़े चुरा लो और इसके बाल बाल चुरा लो, देखें क्या करता है। ब्रह्मा समझ रहा है ये मेरी इच्छा है, किंतु मेरी इच्छा नहीं, वो किसकी इच्छा? कृष्ण की इच्छा से ब्रह्मा को बुला करके ब्रह्मा के अंदर में प्रेरणा दिया। जब कृष्ण की इच्छा होती है तो ऐसे ही करा देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सोचे कि मैंने किया किंतु कराया योग माया ने। अब कृष्ण बने हुए बछड़ों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के, वो ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए। अब तो जितनी भी गायें थी उनकी अरमान पूरी हो गई। पहले वो क्या करती थी, पहले अपने बछड़ों को इतना अधिक प्यार नहीं करती, कृष्ण को प्यार करती। इसलिए कृष्ण जब भी सामने आ जाते उनको चाटती और उनके स्तन से दूध अपने आप चुचाने लगता और कृष्ण उसको पान करता। इसके बाद में बछड़े को पीछे पिलाते, प्यार करते। और महिलाओं की ये, माताओं की ये थी जो कृष्ण को अधिक प्यार करती थी और अपने बच्चे को कम। इसलिए गोचारण से आने पर ये लोग पहले कृष्ण की आरती उलाती, उनको खिलाती, प्यार करती, उनको दूध पिलाती, तब फिर अपने बच्चों को प्यार करती। किंतु अब क्या हुआ, अब तो कृष्ण उनके बच्चे बने हुए हैं, इसलिए उनके बच्चों पर जैसा स्नेह है कृष्ण पर भी वैसा ही स्नेह है, बराबरी स्नेह हो गया। और गायों का क्या हुआ, पहले बछड़ों को कम प्यार करती थी और कृष्ण को अधिक प्यार, अब बछड़ों को भी कृष्ण बछड़े बन गए हैं इसलिए दोनों पर सम प्यार हुआ, बराबर प्यार हो गया। बलदेव जी ने लक्ष्य किया, अरे पहले तो ऐसा होता था कि ये ऐसा क्यों, एक दिन जब बाकी रह जाए एक वर्ष होने में। बलदेव जी ने ये बड़ी आश्चर्य की बात, ये गोपियां पहले कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, अब दोनों को अपने बच्चों को और इसको बराबर प्यार कर रही है, ऐसा क्यों। और एक बलदेव जी ने देखा गायें गोवर्धन में चल रही थी, हजारों लाखों और बड़े बड़े उम्र वाले गोप लोग उनको चरा रहे थे और उनके बच्चे कृष्ण के साथ में मधुबन में छोटे छोटे बच्चों को, बछड़ों को, बाछुड़ियों को चरा रहे थे कृष्ण के साथ में, बलदेव और कृष्ण। जब वहां से देखा गायों ने, गोवर्धन की चोटी से देखा मधुबन में, देखा ये हमारे एक वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनको देखा, नए नए बच्चे उनको हुए हैं, पास में थे, उनको प्यार नहीं किया और उनको देख करके दौड़ी गायें, ये पुराने एक वर्ष वाले बछड़े कौन हैं, ये कृष्ण बने हुए वो बछड़े, इसने नए बच्चों को छोड़ दिया और इन बच्चों को देख करके गायें दौड़ी बड़ी तेजी के साथ दकारती हुई चली, पूछों को उठा दिया और चारों पैरों से कुत्ती हुई चली। ये जो गोप लोग थे लठिया लेकर के उनको घेर करके उनको जाने से निषेध करना चाह, लठिया लेकर के मारा भी किंतु आज मानी नहीं उसी बात, लठिया खाती हुई भी बड़े वेग से दौड़ी, इनको पकड़ नहीं सके बार, और वो मधुबन में पहुंच करके अपने पुराने बच्चों को दूध पिलाने लगी और ऐसा चाटने लगी जो प्रेम से जो उनको अपने अंदर में ले गई। बलदेव जी देख रहे हैं बस ये क्या बात, नए बच्चों को छोड़ दिया और नए पुराने बच्चों को ये इतना प्यार कर रही है, और क्या वो जो गोप लोग थे उनको बड़ा क्रोध हुआ, गाय आज उनको घेर नहीं सके। इसलिए गाय जब उनकी बातें नहीं मानी तो लठिया लेकर के दौड़े और बोले जैसे ये बच्चों को आज हम पीटेंगे। इन्होंने सिंगार बेनी क्यों बजाई, इन लोगों की बदमाशी से ये गाय भगी हैं, इसलिए बहुत क्रोध हमको हुआ, बड़े क्रोध से वो भी दौड़े, आज बच्चों को आज पीटेंगे दो तो थप्पड़ लगाएंगे। किंतु जब वो निकट में आए कृष्ण को देखा, बच्चों को देखा, ये बच्चे कौन हैं, ये कृष्ण बने हुए, जब देखा उनका क्रोध दूर हो गया। सबसे प्यारा अपनी आत्मा है, आत्मा से बढ़कर के वो कोई प्यारा नहीं है। यदि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से युद्ध होता है तो हम अपने राष्ट्र की तरफ से लड़ते हैं, यदि बंबई से और दिल्ली से यदि कोई आमना सामना हो, लड़ाई झगड़ा फुटबॉल क्रिकेट हो, तो हम क्रिकेट में जाए किसी चाहेंगे, बंबई वालों उनका पक्ष नहीं लेंगे। यदि पिताजी और पिताजी के भैया में लड़ाई लग गई, मुकदमा लग गया, तो किसका पक्ष लेंगे, और यदि घर में कुछ हो गया ना तो सौतों में या किसी में यदि झगड़ा लगा तो अपनी मैया का पक्ष लेंगे। अब चलो और आगे, यदि स्त्री में और मैया में यदि या बाप बाप मैया से स्त्री से झगड़ा लगा तो क्या करेंगे, ये तो बड़ी भारी मुश्किल होगी, स्त्री कही इन लोगों के साथ में रहने से मैं नहीं रहूंगी आपके पास में, मैं तो अपने पीहर में चली अपने दो लड़कों को जो बेटे थे एक बेटी थी और लेकर के कही या तो तुम्हारी बात मानो इनसे अलग हो और नहीं तो मैं चली। अब वो किसकी बात मानेगा, मैया बाप की मानेगा न कि अपनी स्त्री की बात मानेगा। यदि पहले जैसा बेटा हुआ तब तो उनको समझाने की चेष्टा करेगा और नहीं कहा जाए नहीं मैं अलग हो रहा हूँ तुम्हें लेकर। आजकल के लड़के जो होंगे तो कहीं अब चल अलग हो जाना ही अच्छा है। यदि एक व्यक्ति की वो हाथ में थोड़ा सा एक अंगुली पक गई और वो ऐसी पक गई नहीं काटने से वो आदमी मर जा रहा है, गैंग्रीन या क्या रोग होता है, वो फैल जाएगा विषाक्त होगा, इसको काटना जरूरी है। तो अपनी प्राण रक्षा के लिए क्या करेगा, यदि पूरा हाथ काटना हुआ इसको भी काट देगा क्योंकि वो बचना चाहेगा, वो इसलिए अपने अंगों को भी काट देता है अपने बचने के लिए। और यदि आदमी ने समझा अब जीवन में हमें कोई सुख नहीं है, केवल दुख ही सुख है, अब मरना है, तो क्या करेगा, फांसी लगा करके मर जाएगा अपनी रक्षा के लिए। इसलिए प्यारा कौन हुआ, आत्मा। आत्मा तो मरेगी नहीं और आत्मा में परमात्मा उसके अंदर में है, इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा प्यारा होता है। इसलिए सबसे बड़ा प्यारा होता है परमात्मा, कोई किसी का प्यारा नहीं, आत्मा जो भगवान का है, भगवान के लिए ही सब प्यारे हैं। इस चीज को अभी नहीं तो पीछे समझेंगे हम लोग। इसलिए कृष्ण भी बच्चे और बछड़े बने हुए हैं, इसलिए गायों का भी प्यारे हैं और गोपों को भी प्यारे। उनका क्रोध शांत हो गया, गोदी में उन्होंने ले लिया, उसका मस्तक चुम्बन करने लगे, उनके गालों को चुमने लगे और प्यार के साथ में हाथ फेरने लगे, उनका भी क्रोध दूर। और दीदी ने कहा जी क्यों ऐसा क्यों हुआ। इसमें और भी एक लक्ष्य की बात थी, उसी वर्ष में गर्गाचार्य जी ने ऐलान किया, घोषणा की, देखो यह वर्ष जो है बहुत बड़ा अच्छा है और साइट बड़ी ठीक है, ग्रह नक्षत्र बड़े ठीक हैं, जो अपनी कन्या की शादी इस वर्ष में कर देगा कहीं भी गोपों से, उसका पति अजर अमर बनेगा, उसका सौभाग्य कभी नहीं भूलेगा, परम सौभाग्यवती रहेगी, उसको कभी दुख नहीं होगा, लक्ष्मी उसके घर में सप्तमी बरसती रहेगी, इस वर्ष कोई शादी नहीं। सब गोपों ने अपनी छोटी छोटी लड़कियों की भी शादी गोप कुमारों से कर दी, यहां तक कि गर्भ में यदि कोई बच्चा है तो उसने कहा यदि मेरी लड़की हुई और आपका लड़का अथवा मेरा लड़का और तुम्हारी लड़की, हम लोग शादी कर सकते, अभी संकल्प कर दिए। इसलिए ये शादियां जो हुई किसके साथ में हुई, कृष्ण के साथ में बने हुए थे, इसलिए कृष्ण के साथ में सब गोपियों की शादी हुई। ऐसा मत समझना कि उनकी शादी दूसरी जगह हुई और दूसरी की स्त्री थी, बल्कि वो सभी कृष्ण की हुई, किंतु योगमाया ने कुछ कारण से ऐसा करा दिया था, इसलिए कृष्ण के साथ में उनकी भी शादी हो गई, उनकी भी इच्छा रह गई, गोप माताओं की भी हो गई, गायों की हो गई। इस तरह से ब्रह्मा जी को मोहित कर करके और सबको उन्होंने वरदान जैसा था दिया था। अब देखो ब्रह्मा जी एक वर्ष के बाद मां कृष्ण को बलदेव जी ने कहा भैया ये तो ब्रह्मा की माया नहीं हो सकती, देवताओं की माया नहीं हो सकती, ये कौन है ये ग्वाल बाल और ये बछड़े, देखा तो वो कृष्ण ही बने हुए हैं। तो कृष्ण से पूछा ये तुम्हारी एक यशोदा मैया के स्तन पान से दूध पान से तुम्हारा पेट नहीं भरा, आज लाखों कोटि गोपियों के तुम बेटे बनकर के उनका दूध पी रहे हो और किस पर भी पेट नहीं भरा, तो लाखों गायों के तुम बेटे बनकर के बछड़े बनकर के दूध पी रहे हो और तभी नहीं पेट भरा, तो इधर उधर चोरी करके खा रहे हो, तुम्हारा खेत कितना, ऐसी लीला तुमने क्यों की। कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, बलदेव जी की अतिरिक्त इस लीला को कोई नहीं समझा। अब ब्रह्मा जी आए एक वर्ष के बाद दूसरे दिन, इधर में जब जो ब्रह्मलोक में गए तो वहां पर संतरीक्ष था, उन्होंने कहा जैसे आप कौन है, तो मैं ब्रह्मा हूं, देखता नहीं ये हमारे चार मुख है, अरे हमारे चार मुख वाले ब्रह्मा जी तो भीतर में बैठे हैं, तू कहां से आया, उनको प्रवेश ही नहीं देता। बहुत उन्होंने कहा तभी कहा नहीं वो तो प्रभु हमारे बैठे, उन्होंने कहा दिया जी हमारा लेकर के यदि आया तो उसको बाहर कर देना, इसलिए सभी मिल करके उसको बाहर कर देंगे। तो उन्होंने ध्यान धरा कि भाई भीतर में कौन बैठ गया, अरे देखा जी वो कृष्ण ही यहां पर चतुर्मुख ब्रह्मा बन करके और हमको आने नहीं दे, बस वहीं से उल्टे पैर लौटे, अरे ये तो हमारा उनके चरणों में अपराध हो गया, लौट करके जब ब्रज में आए अब यहाँ सब देखा, देखा जैसे ये ग्वाल बाल भी बने हैं, बछड़े भी बने हैं, इनके साथ में चल रहे हैं प्रतिदिन। देखा जी कंदरे में गए, देखा वहां पर तो वो बछड़े वहां पर बंद है, इधर में ग्वाल बाल भी देखा जैसे वहीं पर मूर्छित होकर के पड़े हैं, और इधर देखा जी ये बछड़े भी हैं, इधर देखा उधर देखा एक साथ में चार आंखों से इधर, चार आंखों से उधर, आठों आंखों से देखा, देखा जी वहां पर भी नहीं, देखा जी ओ ये तो दूसरे कोई नहीं हो सकते। इतने में हाथ जोड़ करके आंख बंद करके उनके चरणों में गिर पड़े, इतने में देखा जब आंख खुला खड़े हुए ये सारी जितनी मूर्तियां थी ये सब चतुर्भुज बन गई नारायण, जितने ग्वाल थे जितने बछड़े थे सभी के सभी चतुर्भुज ये बन गए नारायण। और देखा क्या सभी देवता लोग शंकर ब्रह्मा इत्यादि अपना मुख था चार, और जो ब्रह्मा थे कोई आठ मुख वाले, कोई 16 मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, कोई 10,000 मुख वाले, कोई करोड़ मुख वाले ब्रह्मा, और शंकर जी कहीं 3 कहीं 5 कहीं इस तरह से करते 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 करोड़ों आंखों वाले और मुख वाले शंकर जी, और सब लोग उनके देवता लोग सब स्तुति कर रहे हैं, देख करके चकित हो गए। इसके बाद में सत्संग प्रणाम किया, सत्संग प्रणाम करने के बाद में जब देखते हैं उनकी तरफ में तो देखा क्या एक कृष्ण अकेले हाथ में दही का अन्न और कवल है, और एक तरफ में सिंगा, एक तरफ में बांसुरी, और इस तरह से सूखा हुआ मुंह खोज रहा है हमारे बछड़े की धर गए, हमारे ये ग्वाल बाल की धर गए, ब्रह्मा जी अब तो स्तौ स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण ने इतने में एक और लीला देखा दी, देखा है श्री राम वहां पर खड़ा, उसके ऊपर में हाथ में रखे हुए हैं, और बच्चे जितने हैं वो चौमा चौमा कर रहे हैं, ये खड़ा है उनको चिढ़ा रहे हैं, ये कौन है कहां से चौमा आ गया। उस समय में वो स्तौ स्तुति कर रहे हैं, नवमी झटे अब्रपक्षे तरितंबराय गुंजा वसंत परिपिच्छल लसन मुखाय बन्नस्रजे कौलबेश्व विषाण रेणु लक्ष्मीय मृदुपदे पशुपांग गजाय। स्तौ स्तुति करने लगे, ये श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा जी ने जो कृष्ण की स्तुति की है बहुत ही मार्के की है, एक दिव्य रत्न है, वैष्णव लोग रोज रोज इनका पाठ करते हैं, जिसका पहला श्लोक ये नवमी झते अब्र पशुषे, नवमी हे कृष्ण हे पशु पंग जाय, पशु माने पशु को पालन करने वाले नंद महाराज, उनके अंग से पैदा हुए ये जो कृष्ण है यशोदा नंदन नंद नंदन, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके चरणों की मैं पूजा और अर्चना करता हूँ। नवमी अब्र पशुषे, आपका ये अंग कैसा है, मेघ के समान, नवीन मेघ माने जो पानी से भरा हुआ नवीन मेघ है, और उस पर बिजली के समान में उनका पीतम्बर फहरा रहा है, गले में बैजयंती माला गले से लेकर के पैर होता है लंबी, और उसमें बेली चबेली जोई 7 रंगों की मालाएं उसमें हैं, तुलसी की मंजरियां उसमें लगी हैं, मधु भ्रमर के लोग से भ्रमर मधु के लोग से उस पर गुंजार कर रहे हैं, इस तरह से अत्यंत सुंदर रूप धारण करके, और सखा लोग क्या कर रहे हैं, कन्हैया तेरी जय हो कन्हैया तेरी जय हो कर करके, और अपने सुकोमल चरणों से पृथ्वी पर चलते हुए अपने पैरों का दाग उसमें क्या है, वज्र ध्वजा अंकुश कलश त्रिभुज कमल इत्यादि, उसमें कलश इत्यादि है, ऐसे अनेक प्रकार के चिन्ह से युक्त उनके चरण कमल है पृथ्वी पर रख रहे हैं, आज पृथ्वी भी धन्य हो रही है, इतना सौभाग्य जी कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रही है, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। अंत में क्या कहते हैं, कहते हैं जैसे मैं हे कृष्ण मैं सदभूरी भाग्यमी हाँ जन्म किम पटभ्यम जज गोकुले कतमांग रजो अभिषेकम जजीवी तंग तू निखिलम भगवान मुकुंद सद्याप जब पद रजस्व श्रुति मेघ्यमेव, श्रुतियां मैंने वेद की ऋचाएं जिनकी आज तक भी आपको खोजते खोजते थक गई नहीं मिले, उनके चरण कमलों की चिंता नहीं श्रुतियां कर रही हैं, लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करके आज मैं आपके चरणों की वंदना कर रहा हूं, मैं आपके चरण की वंदना करने योग्य नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूली चाहता हूं अपने मस्तक पर, इसलिए ब्रज में जहां कहीं भी आपके तो चरणों की तो धूलि मिल नहीं सकती। तब हो सकता है कोई भी ब्रजवासी हो, कोई भी ब्रज का, यहाँ तक मेहतर भी हो, उसकी चरण की धूलि हमारे सिर पर यदि लग जाए, मैं पत्थर होकर के जन्म ग्रहण करूं ब्रज में, नहीं तो गोकुल में हो जाए, और वहां पर मैं पत्थर बन करके जाऊं, और कोई जमादार नहीं, जो टट्टी कमाती है उसके पैर गंदे रहते हैं, वो पैरों पर हमारे ऊपर में अपने चरणों को रगड़ रगड़ करके पानी देकर के धोती है, साफ करती है, ऐसा पत्थर भी बच जाए ब्रज में, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। मैं आपकी चरण की धूलि या ब्रजवासियों की गोपियों की चरण की धूलि हम ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है, इसे आप हमारे ऊपर में कृपा करें, जो पत्थर भी हो जाऊंगे और किसी के भी ब्रज में। तदस्तुमय नाथ सभूरि भागो भवे अत्र वा अन्नत सुवासिरस्य, प्रभु ये भी मेरे लिए संभव, मेरा तो जन्म यहाँ ब्रज में या कहीं भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, और आपके जो भक्त लोग हैं उनमें से कोई एक होकर के जन्म ग्रहण करो, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करूं, आपका भवन नाम करूं, और जहां जन्म हो भक्तों के घर में जन्म हो, चाहे कीड़े मकोड़े भी हो जाऊं तो भक्तों के घर में, यदि कुत्ता बनूं तो भक्तों के घर में उनका जूठा रोटी खाऊंगा, और उनके प्रसाद जो उत्सित होंगे वो मैंने यदि ग्रहण किया, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभो मैं देखता हूं कि आपकी ये प्रतिज्ञा है, जे यथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो लोग कृष्ण के जैसे भजन करते हैं, जो इच्छा करते हैं उनको आप देते हैं परिपूर्ण कर, किंतु मैं देखता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा पर नहीं रहने की, कैसे नहीं रहने की, तो इसलिए नहीं रहने की, पूतना आपको मारने के लिए गई, बाल घातनी रुधिर रक्त पान करने वाली छोटे छोटे बच्चों के शिशुओं के चबा जाती खा जाती उनका रक्त पान करती, और वो भी कृष्ण को मारने के लिए गई, तो कृष्ण ने क्या किया, उसका दूध तो था नहीं, बीज पान कर दिया हो गया, और पान करके उसको गति क्या दी, सोचा क्या हो ये मेरी मैया जैसा रूप बना करके आई, बेस बना करके आई छल से मारने के लिए, तभी मैया का बेस बनाई, इसलिए माता की गति दे दो, उसको माता की गति दे, तो बतलाओ तो कृष्ण से बड़ा स्वयं दयालु होगा, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके कंग बार दयालु शरणम ब्रजम, और दूसरे का शरणम किस लिए जाए, ऐसा तो कोई दयालु नहीं। राम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बलदेव उनको लक्ष्मण को भी छोड़ दिया, कृष्ण के पास में जो गया उसको वही सब इच्छा पूर्ण कर दी, बहुत सी कथाएं हैं, समय हो चुका है, इसलिए अगले दिन हम लोग उनकी और लीलाओं का वर्णन करेंगे, 12 तारीख को हम लोग जाएंगे, 11 तारीख को भी कथा होगी, कल हमको विशेष रूप से बम्बई शरण ले जाना है, वहां पर 2 दिन का प्रोग्राम है, किंतु मैं शाम को यहाँ पर आने की चेष्टा करूंगा, इस तरह से कथा यहाँ पर चलती रहेगी, मैं नहीं रहूंगा, रघुनाथ जी हैं और चलाएंगे, और
परसों सुबह हवन,
परसों सुबह में
8 बजे
यहाँ पर हरि कथा की समाप्ति होगी, 10 तारीख को सवेरे 8 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर पूर्णाहुति होगी, प्रसाद वहां पर होगा, इस तरह से हम लोग हरि कथा का समाप्ति करेंगे, और इसके बाद में 11 तारीख को रख करके, और फिर 12 तारीख को सवेरे हम लोगों का जाने का
जून में
हम चेष्टा करेंगे, जहाँ तक हो सके, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ये भागवत को पूरी रूप में हम लोग सुनाएंगे, 12 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, आप लोग यदि चर्च एक पैंडल बनाएंगे जिसमें कि 500-600 हजार आदमी उसमें आ सके, और बड़े अच्छी तरह से कीर्तन करने वाले ब्रह्मचारियों को भी अपने साथ मिलाऊंगा, और अच्छी तरह से यहाँ पर भागवत की कथा आज यही तक रहे, कल हम कल तो होगा नहीं, चाहे भक्तों या तो और बाकी जो कथाएं हैं कुछ हम लोग संक्षेप में रखेंगे, गौर प्रेमानंदे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अंधकार की तरफ में मत पढ़ो, ज्योति के तरफ में पढ़ो, ये अंधकार क्या है, अज्ञानता अंधकार, क्या अंधकार है अज्ञानता, हम लोग कृष्ण के पार्ट पात्र हैं, हम लोग उनके नित्य सेवक, उसमें आनंद है, और उनको छोड़कर सांसारिक सुखों के लिए, सुविधाओं के लिए और शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए जो कुछ करते हैं ये अंधकार, हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्योति है, ज्योति क्या,
कृष्ण के चंद्र नक्ष की ज्योति, उनकी सेवा ही ज्योति है। हम उनकी सेवा छोड़ करके ये अंधकार में जन्म जन्मांतर से जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए ये अंधकार है। और ज्योति क्या है? इससे निकल करके आत्मज्ञान पहले लाभ कर, और आत्मज्ञान लाभ करके कृष्ण की तरफ में बढ़ करके उनकी सेवा को प्राप्त करना ये ज्योति है। इसमें पांच है ना, पंच शिखाए हैं, फाइव क्या
फ्लेम,
ये क्या चीज है? अब वो ज्योति के तरफ में चलेंगे ना तो पांच प्रकार की वो ज्योतियां हैं, शांत दास्य बात्सल्य मधुर। सुनाए कभी ये सब व्याख्या? ये है बीच वाली, क्या है बीच वाली? दूसरी वाली फ्लेम है, दो इधर में है, दो इधर में है, शांत दास्य एक तरफ में और सख्य और बात्सल्य एक तरफ में, और बीच में मधुर वाली राधिका जी का प्रेम है, ये मधुर का सर्वश्रेष्ठ ऊंचे फ्लेम है जिसे कृष्ण को प्रकाशित कर देती है और कृष्ण को भी वशीभूत कर देती है, ये ज्योति है। इस तरह से आगे वैज्ञानिक स्थिति के ऊपर में वो प्रसप्त जब वेद का प्रारंभ कहीं ओम से ही आरंभ करते हैं सब कुछ, इसे वैज्ञानिक स्थिति के ऊपर में इस फिल्म के लिए भागवत में बतलाया गया। ज्ञानन यद्यपि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदा अंगस्य गृहाण गतितम मया, ये चतुर्श्लोकी है। चतुर्श्लोकी को कौन कह रहा है?
भगवान ही ब्रह्मा को कह रहा
है, भगवान का तो एक वो। और मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो विज्ञान है उसका जो अंग है और उसका रहस्य, ये चार और एक कृष्ण जो स्वयं बोल रहे हैं, ये पांच मिलकर के ये पंच ज्योति है। भागवत में इन पांचों चीजों का विश्लेषण है। चतुर्श्लोकी का जो श्लोक है उसको कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए वक्ता।
अच्छा।
और कृष्ण कह रहे हैं मेरा ज्ञान, मेरा एक दो हुआ सारो सारो सारो, और मेरा विज्ञान और उसका अंग और उसका रहस्य, ये चार चीजें वो और कृष्ण वक्ता वाले वो, क्योंकि कृष्ण का ये चार, तो ये पांच हो गए।
वक्ता की चार चीज ज्ञान विज्ञान अंग और रहस्य,
ये पांच हुआ ना,
ये चार हुए। वक्ता प्लस ज्ञान,
वक्ता वक्ता चार चीज, ये मेरा ज्ञान, तो वक्ता कौन? कृष्ण। ये रूप कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसे एक तत्व तो मूल वो हुए और उनका ज्ञान नंबर दो, उनका विज्ञान, उनका अंग और ये पांच। अब एक एक लो, काय श्रीयम ते कल्पदायत वेणु गीत, कृष्ण का ये रूप, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयोग, ये रूप हुआ। और कह रहे हैं अपना ज्ञान, गीता का ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान, और भागवत वाला जो ज्ञान उद्धव को दिया ये, अरे सुन नहीं रही इधर देख, तुम्हारी इंग्लिश भी सॉलिड है, संस्कृत भी सॉलिड है, हिंदी भी ठीक है, घर में बैठ करके काज में क्या कर रहे हैं?
साल में एक बार तुम्हें बाहर जाके लेक्चर देते।
वक्ता कौन है? कैसे?
कौन
से कृष्ण? बरहा पीड़म, वो कृष्ण है। उनका ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान पहला एकदम प्रारंभिक, और भागवत का जो ज्ञान है उद्धव को जो दिया है वो राष्ट्र ज्ञान। विज्ञान क्या है? गोपियों का प्रेम ही विज्ञान है। गोपियों का प्रेम विज्ञान है। और अंग श्रवणम कीर्तन इत्यादि भक्ति के साधन भी इसके अंग हैं। और
रहस्य,
रहस्य गोपियों का अत्यंत रहस्यपूर्ण में जो प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा कौन सा? महाभाव, और उसके बाद में मादन मोदन आदि जो प्रेम है, ये किसी को रहस्य मालूम नहीं। यहाँ तक कि सत्यभामा रुक्मिणी लक्ष्मी इत्यादि को भी पता नहीं है, और वो एकमात्र श्रीमती राधिका में मादन मोदन, ये रहस्य है। पांच अंग हुए, पांच अंग हो गए, ये भागवत का विषय है और यही आरती के पंच सिखाए। अब इसी की श्रीमद भागवत सारी व्याख्या इसी की है। कृष्ण का रूप, कृष्ण का तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये सब गीता का ज्ञान अधूरा और एकदम छोटा है। प्रारंभिक उसमें कृष्ण के मधुर रूप का, गोपियों के जो प्रेम है, इसका ज्ञान नहीं है। कल एक सूत्र में दिया मनमना को, और नहीं पर शरणागति अंतिम जो भक्ति, स्वयं शरणागति नहीं है, भक्ति का दरवाजा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, ये परमार्थ का दरवाजा। जब उसमें घुसते हैं तब प्रेम के राजभवन में पहुंचेंगे। उसमें भी बहुत सी स्टोरियां हैं, मुख्य रूप से वैकुंठ पहला गेट, उसको भेद करके जब आगे चलेंगे तो अयोध्या का गेट साकेत, उसको भेद करके चलेंगे तो द्वारका का गेट बोलो, और उसको भेद करके चलेंगे तो ब्रज में पहुंचेंगे। ब्रज में भी पांच चार जोड़ियां हैं, ब्रज में पहुंचने पर चार जोड़ियां, वो जोड़ियां हैं दास्य, सप्त, वात्सल्य और मत्स्य। कृष्ण का जो भवन है नंद भवन, वो मूल है वहाँ राजभवन, और उसके उपवन है जहाँ पर गोपियां मिलती हैं, ये कुंज है। कृष्ण भवन को भी छोड़ करके उन कुंजों में जाते हैं, वो इतने मनोरम है। जमुना जी बह रही है, कोयल कुहक रही है, कमल खिल रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, उसमें गोपी और कृष्ण, ये सर्वोत्तम, ये रहस्य। करते तुमको समय नहीं है क्या? डॉक्टर साहब की शादी उदी हुई है, स्तुतियां करें, वो सबसे श्रेष्ठ कैसा हो जाए। स्तुतियां जिनकी 100 से स्तुति कर रही है, जिसकी वो श्रेष्ठ होगा ना कि स्तुति करने वाला श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना समझ में उनकी मेरी। जितने प्रकार की स्तुतियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ स्तुति कौन सी होगी, कौन सी स्तुति?
गीत के लिए
नहीं, नहीं, जितनी प्रकार की कृष्ण की स्तुतियां और स्तव हैं, स्तुतियां तो उन्हीं के चरण कमल को स्तुति कर रही है, तो उसमें एक श्लोक है थोड़ा सा इंगित,
वेद स्तुति में,
वेद स्तुति में वो कह रही है कि हम आपके प्रिय से प्रिय व्यक्तियों की प्रिय से प्रिय व्यक्तियों का उनकी सेवा को देकर के लुब्ध हैं। माने किन की? राधा जी की सेवा को देकर के लुब्ध हैं। हम भी वैसी सेवा करना चाहते हैं, और दूसरे जन्म में उन्होंने स्तुतियों ने उपासना की तब वो गोपियों के घर में जन्म ग्रहण किया, इसलिए स्तुति करी गोपियां हैं। तो वो जिसके स्वरूप को देख करके, सेवा को देख करके लुब्ध हैं, लालसा उनकी है, वो श्रेष्ठ है ना कि ये स्तुतियां श्रेष्ठ भी है उनकी स्तव और स्तुतियां? आसाम हो चरण रेण जिसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल मलतौ सभी नाम जब्द स्वजन सजन आर्य पसंत हिस्सा भेजे मुकुंद पदविन श्रुति भी निर्मित किया। सुधरे मृगम मैंने क्या श्रुतियों के लिए भी वो पता नहीं चलता कि श्रुतियां लाखों वर्ष तपस्या करके उनका अनुसंधान नहीं कर पाती, खोज नहीं पाती उनके चरण की धूली को, और गोपियां अपने मुट्ठी में उनको नचाती हैं, ललकते हैं उनसे मिलने के लिए, मथुरा से दूत भेजते हैं, द्वारका से दूत भेजते हैं, गोपियों ने दूत भेजा कहीं, जिनको गरज है वो तो भेजेंगे, तो कृष्ण जिनके लिए दूत भेजते हैं, और वहां पर कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिलने के लिए गए और वहां पर उनको बुलाए, इसलिए ये सब रहस्य आपको यह तो डिस्पेंसरी में अभी जाना होगा, तो कर्म प्रधान है तो कर्म करना चाहिए, इसी उपदेश तो दिया कृष्ण ने कि नहीं दिया? कर्म के संबंध में आप लोगों को क्या बोलते हैं?
महाराज जी कह रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है कि कर्म इज साइंटिफिक।
ये भागवत का श्लोक नहीं है, नहीं ये गीता का है, भागवत का है, गीता का नहीं है,
भागवत से बोलना।
अरे गीता से आप बोलिए सब,
गीता
कर्म के संबंध में कृष्ण की क्या आइडिया देते हैं अर्जुन को, आप क्या लोगों को कहते हैं इन योर क्लासेस अबाउट कर्म?
श्रेयो ज्ञानम अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ज्ञाना कर्म सर्व कर्म फल त्याग त्याग छंदे
व्हाट इज कर्म? What is the definition of karma? I go, he goes. Is there any karma there?
Karma is meaning. Karma has got many meaning.
Karma ke bahut meaning
hai. Aap ek batlaiye mood. Ek adhik ki zarurat nahi. कुछ सीखे नहीं, मैं आपको परीक्षा नहीं ले रहा, आपको कुछ जो आप प्रचार करेंगे, दिस इज नॉट कर्म, दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ कर्म। व्हाट इज कर्म?
मीनिंग ऑफ कर्म डेफिनेशन ऑफ कर्म।
मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, नो ऑब्जेक्ट ना, वर्ली भर्ब।
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि।
फर्स्ट इन गीता
फर्स्ट
कर्म,
कर्म वेदों में लिखा है, इसीलिए बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम।
मैं आपको मीनिंग बतला रहा हूँ, आप इसको समझिए, यू शुड फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग। मैं जा रहा, आई गो, मनली हियर इज भर्ब एंड इन ट्रांजिटिव भर्ब विथ नो ऑब्जेक्ट, सो गोइंग इज नॉट कर्म, स्मेलिंग इज नॉट कर्म, सीइंग इज नॉट कर्म। मैं रोटी खाता हूँ, यहाँ रोटी कर्म है। जब कोई क्रिया अपन उसका फल लेने के लिए करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। फलो दिस इज कर्म, किंतु आप कोई चीज भगवान को समर्पण करने के लिए करते हैं तो यह भक्ति हो गया, कर्म नहीं है। समझ रहे हैं? जब कोई उद्देश्य नहीं हो, यह शरीर निर्जीव है, शरीर कुछ नहीं करता, इसलिए मैं निष्काम होकर के कर्म कर रहा हूँ, दैट इज ज्ञान। सेम थिंग, जो कुछ हम कर रहे हैं अपने लिए जब करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे संसार में, और इस फिजिकल बॉडी के द्वारा जब करते हैं तो ये कर्म होगा, उसका फल के लिए। जैसे बगीचा लगाते हैं फल के लिए, अपने के लिए, दूसरों के लिए, ये कर्म है। और बाजार से फ्रूट ले आ रहे हैं, इसलिए कि मैं इसको कृष्ण को भोग दूंगा, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्म नहीं होकर के भक्ति हो जाएगा। और जब भाई ये शरीर मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, शरीर से जो कुछ होता है वो मैं नहीं करता, मैं करता नहीं हूँ, इसलिए निष्काम रूप में हम अपना कर्तव्य करेंगे, तब इसको ज्ञान कहेंगे। जब किसी कोई उद्देश्य नहीं है, रोटी खा रहे हैं, मैं नहीं खाता, मैं तो आत्मा हूँ, मैं रोटी तो आत्मा खाती नहीं, किंतु शरीर के लिए दिया जाता है, तो हमसे कोई मतलब नहीं। इसलिए जनक जी, सुखदेव गोस्वामी, ये सब लोग ज्ञानी हैं, शंकराचार्य ज्ञानी हैं, वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, और भक्त लोग गोपियाँ रसोई बना रही हैं, कृष्ण को खिला रही हैं, सब कुछ ये भक्ति है, अपने लिए नहीं करती, श्रृंगार भी है, श्रृंगार समझते हैं, श्रृंगार अपने लिए नहीं करती, कृष्ण के लिए करती हैं, रास में उनके साथ में नृत्य कर रही हैं, कृष्ण के आनंदित करने के लिए, अपने लिए नहीं, कृष्ण भी कर रहे हैं नित्य गोपियों को आनंदित करने के लिए, इसलिए वहाँ पर कर्म नहीं, वहाँ पर भक्ति है। और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि का नंगे चल रहे हैं, धड़ंग उनको कोई दिया, खाया नहीं खाया कोई बात नहीं, ये ज्ञान निष्कर्म। और जब अपने लिए हम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, फल के लिए, तो ये इसलिए गीता में कहा गया कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मां फलेषु, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसे फल को दूर रख करके काम करो। तो फल में दूर रख करके कैसे करो, तब आपने जो कहा यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्र कर्म बंदना तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचार, आसक्ति छोड़ करके, फल की कामना छोड़ना ये आसक्ति रहित है, इसी को संग रहित कर। और